आमोस अध्याय तीन पद 1। हे इस्राएलियों, ये वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है। इसमें यहूदा भी सम्मिलित है। आमोस अध्याय 3 पद 1 में आगे लिखा है, जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूं। परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है और ये एक प्रकार का विलाप है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, आमोस अध्याय 3 पद 2, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। वो देश जिसके पास अधिक सुविधाएं होती है, उसके उत्तरदायित्व भी अधिक होते हैं। लूका अध्याय 12 पद 48, जिसे बहुत सौंपा गया है उसे बहुत लिया जाएगा। इसराइल को परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया था। पौलुस कहता है, रोमियों अध्याय 3 पद 1, सो यहूदी की क्या बड़ाई? इसका उत्तर वो स्वयं ही देता है, रोमियों अध्याय 3 पद 2, हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो ये कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए, उनके पास पूर्वज थे, उनको व्यवस्था और न्याय सौंपा गया था। वो उनके बहुत अधिक लाभ प्राप्ति की बात करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको अपनी प्रजा चुनकर एक राष्ट्र बनाया था। परंतु ध्यान देने की बात यह है कि इस कारण परमेश्वर के प्रति उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और जब परमेश्वर के जन अपने उत्तरदायित्वों से चूक जाते हैं, तब परमेश्वर दंड देता है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे अपराधों का दंड दूंगा। कुछ सवाल है जो परमेश्वर अपने लोगों से पूछता है। पहला है, आमोस अध्याय 3 पद 3, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या आप किसी के साथ मेल में रह सकते हैं? यदि आप किसी के साथ सहमत ना हो तो क्या आप उसके साथ एकता में रह सकते हैं? नहीं। हम परमेश्वर के साथ कैसे मेल में रह सकते हैं यदि हम उसके साथ एक मत ना हो? तो फिर अधर्मिकता, अपराध और पाप में रहते हुए हम परमेश्वर के साथ एकता कैसे बनाए रख सकते हैं? उत्तर है, कभी नहीं। अपराधों में रहते हुए यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? आमोस अध्याय 3 पद 4, क्या सिंह बिना आहेर पाए वन में गरजेंगे? नहीं, वो तभी गरजेगा जब उसने शिकार पकड़ लिया हो और उसे मारकर उस पर खड़ा हो गया है। आमोस अध्याय 3 पद 4 और 5, क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा? क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? नहीं, बिना फंदा लगाए चिड़िया नहीं फंसेगी। आमोस अध्याय 3 पद 5 और 6, क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उचकेगा? क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग ना थरथराएंगे? आज की भाषा में इसे कहे तो इस प्रकार होगा, यदि हवाई आक्रमण का सायरन बजे तो क्या लोग डरेंगे नहीं? मैं कभी नहीं भूलूंगा जब हम 1967 की लड़ाई के समय तेल एबिब के बाहर बेतियाम में थे। हम होटल में थे जो मिस्र से हवाई जहाज द्वारा 20 मिनट की दूरी पर था, और मिस्री सुएस नहर के पार सीनाई में लड़ रहे थे। मध्य रात्रि करीब 1 या 2 बजे हवाई आक्रमण का सायरन बज उठा। हम लोग मिस्र की ओर भूमध्य सागर के तट पर सबसे बड़े भवन में थे। संपूर्ण अंधकार होते हुए हमारा पूरा दल भूतल की ओर चल पड़ा, जहां हवाई आक्रमण से बचने के लिए सुरक्षित स्थान था। हमें नींद से जगाकर अंधेरे में चलने का अद्भुत अनुभव हुआ। कुछ स्त्रियां चाहती थी कि उनके पति उनके श्रृंगार करने तक प्रतीक्षा करें। कई बार हम विचित्र काम करते हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि रात के अंधेरे में खतरे के सायरन की आवाज सुनना और ये सोचना कि बम इसी क्षेत्र में गिरेगा बड़ा डरावना सा लगता है। प्राचीन इसराइल में सायरन के स्थान पर तुरही की आवाज की जाती थी, जो दर्शाती थी कि शत्रु आ रहा है। जब तुरही बजती थी तब लोगों के दिल में डर समा जाता था। सवाल यह है, तुरही बजे तो क्या नगर से लोग थरथराएंगे नहीं? आमोस अध्याय 3:6 में आगे लिखा है, क्या वचन के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? विपत्ति पुराने नियम में अधिकतर दंड का पर्याय शब्द है। विपत्ति न्याय का प्रतीक है। लोग उलझन में पड़ जाते हैं जब वे यशया की पुस्तक में पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है, क्या मैंने विपत्ति नहीं बनाई? वे कहते हैं, ओ पवित्र पिता कैसे विपत्ति की रचना कर सकता है? विपत्ति शब्द का अर्थ दंड से है जो दुष्ट लोगों पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर जिन्हें दंड देता है उन पर विपत्ति आती है। क्या यहोवा के बिना भेजे कोई विपत्ति पड़ेगी? आमोस अध्याय 3:7। इसी प्रकार से प्रभु वचन अपने दास भविष्यत वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। ये बड़ी रोचक बात है। वो कहता है परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, वो न्याय नहीं करेगा, वो केवल अपने नबियों पर दंड को प्रकट करेगा। दंड आने से पहले नबी लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि परमेश्वर दंड अवश्य देगा। आमोस अध्याय 3:8। सिम गर्जा, कौन ना डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? यरमिया जब भविष्यवाणी कर रहा था तब लोगों ने उसको चुप रहने को कहा, परंतु वो चुप नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उसको काल कोठरी में डाल दिया। वहां उसने अपनी दशा देखी और वो परमेश्वर के व्यवहार के बारे में शिकायत करने लगा जो उसने अपने सेवक नबी के साथ किया। उसने कहा, मैंने ठान लिया था कि मैं प्रभु के नाम से और नहीं बोलूंगा, परंतु मैंने उन्हें संदेश दिया और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का वचन उन्हें फिर भी नहीं सुनाऊंगा, मैं प्रभु के नाम से फिर ना बोलूंगा। उसने कहा, लेकिन उसका वचन मेरी हड्डियों में आग के समान था और मैं चुप रहने की कोशिश करते करते थक गया। जब पत्रस को कहा गया कि वो यीशु मसीह के नाम से कुछ ना बोले, पत्रस ने कहा, जो कुछ हमने देखा और सुना है क्या उसे ना बोले? हम तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते। ऐसा हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसे ना बोले। पौलुस मसीह के बाध्य करने वाले प्रेम विषय के बारे में बताता है कि प्रभु ने कहा है तो फिर हम कैसे चुप रह सकते हैं। आमोस अध्याय 3:8-13। सिम गर्जा, कौन ना डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? अश्दोद के भवन और मिस्र देश के राज भवन पर प्रचार करके कहो, समरिया के पहाड़ों पर इकट्ठे होकर देखो कि उसमें क्या ही बड़ा कोलाहल और उसके बीच क्या ही अंधेर के काम हो रहे हैं। यहोवा की ये वाणी है कि जो लोग अपने भवनों में उपद्रव और डकैती का दन भटोर रखते हैं, वे सीधाई से काम करना जानते ही नहीं। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वो तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। यहोवा यूं कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से दो टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इसराइली लोग जो समरिया में बिछौने के एक कोने या रेशमी गद्दी पर बैठा करते हैं, वे भी छुड़ाए जाएंगे। सेनाओं के परमेश्वर प्रभु यहोवा की ये वाणी है, देखो और याकूब के घराने से ये बात चिताकर कहो। ध्यान दे कि ये लड़का चरवाहा है, पशुओं का रखवाला। उन दिनों में इसराइल में शेर हुआ करते थे। आपको याद होगा, दाऊद जब राजा शाऊल को अपनी योग्यताएं बता रहा था कि वो गोलियात के विरुद्ध जा पाए, उसने कहा, एक दिन मैं अपने पिता की भेड़ों की रखवाली कर रहा था और एक शेर ने आकर एक भेड़ को पकड़ लिया और उसको ले जाने लगा। मैंने शेर को पकड़कर मार डाला। फिर एक भालू ने भेड़ को पकड़ा, मैंने उसे भी मार डाला। परमेश्वर जो शेर और भालू को मेरे हाथ में करने की सामर्थ रखता है, क्या वो गोलियात को मारने का सामर्थ नहीं देगा? मैं जाने के लिए तैयार हूं। आपको याद होगा, जब शिमशोन तिम्ना के रास्ते जा रहा था, तब एक शेर उस पर झपटा था। इसलिए चरवाहों की एक समस्या ये भी थी कि उन्हें शेरों का सामना करना पड़ता था। शेर भेड़ों को उठा ले जाते थे। उसको चरवाहा होने के नाते शेर पकड़ने का अनुभव था, लेकिन वो पहले ही भेड़ को खा गया था। अब दो पैर या कान का एक टुकड़ा बाकी था। ये निराशाजनक अनुभव है कि आपने थोड़ी देर बाद भेड़ को बचाने में देरी कर दी। एक चरवाहा होने के नाते परमेश्वर उसे प्रकृति की बातों के द्वारा समझाता है, क्योंकि चरवाहे प्रकृति और आकाश को भली भांति समझते थे, इसलिए वह उन्हें प्राकृतिक उदाहरणों के द्वारा संदेश देता था। और याकूब के घराने से ये बात चिताकर कहो। आमोस अध्याय 3:14। जिस समय मैं इसराइल को उसके अपराधों का दंड दूंगा, उसी समय मैं बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा। बेतेल वो जगह है जहां इसराइल ने बछड़े की पूजा की थी। यरोबाम ने बेतेल में एक बछड़ा स्थापित किया। दान में और गिलगाल तथा दूसरे स्थानों पर देवताओं के लिए स्थान बनाए और लोग मूर्ति पूजा और इन दूसरे देवताओं की पूजा करने लगे। इसलिए परमेश्वर इन वेदियों के विरुद्ध जो बेतेल में बनाई गई थी कहता है, जिस समय मैं इसराइल को उसके अपराधों का दंड दूंगा, उसी समय मैं बेतेल की वेदियों को भी दंड दूंगा। आमोस अध्याय 3:14-15। और वेदी के सिंह टूटकर भूमि पर गिर पड़ेंगे, और मैं जाड़े के भवन को और धूपकाल के भवन दोनों को गिराऊंगा, और हाथी दांत के बने भवन भी नाश होंगे। समरिया में राजा आहाब ने एक सुंदर महल बनवाया जो हाथी दांत से सुशोभित था और महिमा शोभा और समृद्धि का एक आश्चर्य कर्म था, लेकिन नबी हाथी दांत के भवन के विरुद्ध भविष्यवाणी देता है। आमोस अध्याय 3:15 में आगे लिखा है, और बड़े बड़े घर नाश हो जाएंगे, यहोवा की यही वाणी है।